एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जो सिर्फ दिल टूटने की कहानी नहीं है, बल्कि दिल के मरने की कहानी कहता है।
हाँ बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंग्लो आयरिश लेखिका एलिजाबेथ बोविन के उपन्यास द डेथ ऑफ द हार्ट की।
और ये किताब लिखी गई थी 1938 में।
सही कहा, एक ऐसा समय जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। मतलब हवा में एक बेचैनी थी, एक डर था।
और वो सारा तनाव, वो नाजुक माहौल बोविन की इस कहानी में आप कह सकते हैं कि हर पन्ने पर महसूस होता है।
इसे अक्सर एक बिल्डुंग्सरोमान कहते हैं, यानी किसी युवा किरदार के बड़े होने की कहानी।
लेकिन ये बड़े होने की कोई खुशनुमा कहानी बिल्कुल नहीं है। ये उम्मीदों के टूटने और मोहभंग की एक बहुत ही दर्दनाक यात्रा है।
तो चलिए इसी यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानी हमें ले जाती है लंदन के रीजेंट्स पार्क के एक घर में। बाहर से देखें तो बहुत सलीकेदार खूबसूरत घर है,
लेकिन अंदर से उतनी ही ठंडी।
हाँ, और यहाँ 16 साल की एक अनाथ लड़की पोर्शिया क्वेन रहने आती है। उसके माँ बाप की मौत हो चुकी है और अब वो अपने सौतेले भाई थॉमस और उसकी पत्नी एना के साथ रहेगी।
और पोर्शिया वो कोई आम 16 साल की लड़की नहीं है। उसकी परवरिश यूरोप के अलग अलग होटलों और किराए के घरों में हुई है, लगभग अकेलेपन में।
तो मतलब वो दुनियादारी से एकदम अनजान है।
बिल्कुल, वो एक खुली किताब की तरह है। उसके लिए भावनाएं बहुत सीधी और सच्ची होती हैं। धोखा, दिखावा, झूठ, ये शब्द जैसे उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं।
और वो चाहती क्या है?
बस एक चीज, कोई उसे अपना समझे, कोई उससे प्यार करे।
और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है ना?
हाँ, एक तरफ है पोशिया की ये कच्ची बेबाक ईमानदारी,
और दूसरी तरफ है थॉमस और एना की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां हर बात नपी तुली है, जहां सच्ची भावनाओं को एक तरह से कमजोरी समझा जाता है।
तो बोविन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। क्या एक ऐसा दिल जो सिर्फ भरोसा करना जानता हो, उस समाज में जिंदा रह सकता है जिसकी बुनियाद ही छोटे छोटे झूठ और भावनात्मक बेईमानी पर टिकी हो?
और इस सवाल को एक भयानक मोड़ देती है घटना,
वो डायरी वाली घटना।
हाँ, एना को पोर्शिया की एक निजी डायरी मिल जाती है।
और पोर्शिया के लिए वो डायरी सिर्फ कागज नहीं, वो उसका दिल है, जहां वो अपने अकेलेपन, अपनी उम्मीदों के बारे में सब कुछ सच सच लिखती है।
और एना उसे पढ़ लेती है।
सिर्फ पढ़ती नहीं है, वो उसे एक मजाक का जरिया बना लेती है। ये मासूमियत पर सबसे बड़ा और सबसे क्रूर हमला है।
बिल्कुल, और इस हमले को समझने के लिए हमें किरदारों को थोड़ा और समझना होगा।
हाँ, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी अधूरी दुनिया में जी रहा है।
तो शुरुआत पोर्शिया से ही करते हैं, और उस लड़के से जो उसके दिल की मौत का एक बड़ा कारण बनता है, एडी।
पोर्शिया की कहानी, जैसा हमने कहा, मोहभंग की कहानी है। वो एक उम्मीद से भरी लड़की के तौर पर आती है और एक टूटे हुए दिल के साथ खत्म होती है। उसे ये सबक मिलता है कि भरोसा कितना नाजुक होता है।
और इस सबक में एडी का क्या रोल है?
एडी वो थॉमस की कंपनी में काम करने वाला एक नौजवान है। बहुत आकर्षक है, बातें मज़ेदार करता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला।
मतलब वो क्लासिक बैड बॉय टाइप है।
उससे भी ज़्यादा खतरनाक मुझे लगता है, क्योंकि वो जानबूझकर बुरा नहीं है। उसे बस किसी की परवाह नहीं है, वो आत्मकेंद्रित है।
अच्छा,
पोर्शिया के लिए वो पहला प्यार है, वो उसकी हर बात को सच मानती है। लेकिन एडी के लिए पोर्शिया बस एक खिलौना है जिससे वो मन बहला रहा है।
और इस खेल में पोर्शिया के अपने लोग भी शामिल हैं, एना और थॉमस। एना का किरदार तो बहुत ही दिलचस्प है।
हाँ, बाहर से देखो तो उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती है। खूबसूरत घर, सलीके से रखी हर चीज।
लेकिन ये सब एक मुखौटा है।
तो मुखौटे के पीछे क्या है?
एक भावनात्मक बंजर जमीन। अंदर से वो बिल्कुल खोखली है। उसे न गहरा दुख महसूस होता है, न सच्ची खुशी। और पोर्शिया, जो हर एहसास को इतनी गहराई से जीती है, उसकी मौजूदगी ही एना के इस झूठे परफेक्शन को चुनौती देती है।
शायद इसीलिए वो उसकी डायरी पढ़ती है।
शायद उसे पोर्शिया की ईमानदारी से डर लगता है।
और उसका पति थॉमस, पोर्शिया का भाई,
थॉमस तो एक हारा हुआ इंसान है। अपनी नौकरी से नफरत करता है, अपनी शादी में खुश नहीं है। वो पोर्शिया के लिए जिम्मेदारी महसूस करता है, पर उसके पास उसे देने के लिए कोई भावनात्मक सहारा नहीं है।
तो वो बस चुपचाप सब देखता रहता है।
हाँ, और उसकी यही चुप्पी, उसकी निष्क्रियता उसे पोशिया के दुख में बराबर का भागीदार बना देती है।
इस घर में एक और किरदार है जो इन सबसे अलग है, मैचेट, घर की पुरानी नौकरानी।
हाँ, मैचेट एक तरह से गुजरे जमाने का प्रतीक है। वो सख्त है, अनुशासित है, लेकिन वफादार है। उसकी दुनिया में सही और गलत के बीच एक साफ लकीर है।
कहानी के अंत में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना?
बिल्कुल। जब सब कुछ बिखर जाता है तो मैचेट ही है जो बिना किसी भावना के, सिर्फ कर्तव्य के नाते चीजों को संभालने की कोशिश करती है।
तो इन किरदारों के जरिए बोविन हमें पोर्शिया की मासूमियत के टूटने की कहानी को तीन हिस्सों में दिखाती हैं। उपन्यास के तीन भाग हैं, द वर्ल्ड, द फ्लैश और द डेविल।
नाम ही अपने आप में कहानी क्या देते हैं।
हाँ, पहला भाग है द वर्ल्ड यानी संसार। यह लंदन में पोर्शिया के आने की कहानी है। वो उस ठंडे घर में खुद को एक भूत की तरह महसूस करती है। सब उसे देखते हैं पर कोई उसे सच में नहीं समझता।
और इसी अकेलेपन में वो अपनी डायरी लिखना शुरू करती है,
जो उसका एकमात्र सच्चा दोस्त है, और इसी दोस्त को उसका दुश्मन बना दिया जाता है। एना डायरी पढ़ती है और उसे अपने दोस्त सेंट क्वेंटिन मिलर, जो एक लेखक है, उसके साथ भी साझा करती है। वो दोनों मिलकर पोर्शिया के सीधे साधे विचारों का मजाक उड़ाते हैं।
ये कितना अजीब है ना? मतलब जो मासूमियत से दुनिया को देख रही है, दुनिया उसी को गुप्त रूप से देख रही है और उसका मजाक बना रही है।
और यहीं उसकी मुलाकात एडी से होती है और वो उसके आकर्षण में फंस जाती है।
फिर आता है दूसरा भाग, द फ्लैश। परिवार छुट्टियां मनाने समुद्र किनारे एक विला में जाता है।
यहाँ का माहौल थोड़ा खुला है और पोर्शिया को लगता है कि एडी के साथ उसका रिश्ता गहरा हो रहा है। एडी से वो मीठी मीठी बातें करता है, झूठे वादे करता है और पोर्शिया उस सब पर यकीन कर लेती है।
लेकिन एना का कुछ महसूस नहीं होता, कोई चेतावनी?
पोर्शिया की पुरानी गवर्नेस मिसेस हेकॉम्ब एना को चेतावनी देती भी है। वो कहती है कि पोर्शिया बहुत नाजुक है, उस पर ध्यान दो, लेकिन एना इस बात को हवा में उड़ा देती है।
क्योंकि वो ध्यान देना ही नहीं चाहती। और फिर कहानी अपने सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंचती है, तीसरा भाग, द डेविल।
हाँ, और शैतान यहाँ कोई बाहर से नहीं आता, वो किरदारों के अंदर ही है। लंदन वापस आने पर एक दिन पोर्शिया गलती से एना और सेंट क्वेंटिन की बातचीत सुन लेती है।
और उसे सब पता चल जाता है।
हाँ, उसे पता चलता है कि उसकी डायरी पढ़ी जा चुकी है, कि उसके सबसे निजी विचारों का मजाक उड़ाया गया है। वो पल ही दिल की मौत का पल है, उसका भरोसा टूटकर बिखर जाता है।
एक 16 साल की लड़की के लिए इससे बड़ा विश्वासघात क्या हो सकता है? जिसे वो अपना घर समझ रही थी, वो एक शीशे का घर निकला।
बिल्कुल। और इस सदमे में वो घर से भाग जाती है। सबसे पहले वो एडी के पास जाती है,
उम्मीद लेकर कि वो उसे समझेगा।
हाँ, लेकिन एडी उसे बहुत बेरुखी से ठुकरा देता है। कहता है कि वो इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। ये पोर्शिया के लिए दूसरा बड़ा झटका है।
उसका रोमांटिक सपना भी उसी पल मर जाता है।
इसके बाद वो एक पुराने पारिवारिक दोस्त मेजर ब्रैट के पास जाती है। वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो भी उसकी मदद नहीं कर पाता। वो भी उसे वापस घर जाने की सलाह देता है।
तो पोर्शिया को एहसास होता है कि इस दुनिया में उसके लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है।
उधर घर पर थॉमस और एना को पहली बार अपनी लापरवाही के नतीजों का सामना करना पड़ता है।
और तब मैचेट आगे आती है।
हाँ, मैचेट उसे ढूंढकर वापस लाने जाती है। उपन्यास का अंत बहुत शांत लेकिन बहुत दुखद है। कोई चमत्कार नहीं होता। पोर्शिया घर लौट आएगी, लेकिन वो पहले वाली पोर्शिया नहीं होगी। उसकी मासूमियत हमेशा के लिए खो गई है।
ये कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रह जाती है। इसका सबसे बड़ा विषय तो मासूमियत से विश्वासघात का ही है।
बोविन ने कहीं लिखा भी था कि मासूमियत खुद को इतनी बार एक झूठी स्थिति में पाती है कि अंदर ही अंदर वो एक तरह का अपराध बोध पाल लेती है।
ये कितनी गहरी बात है। मतलब जब आपके आसपास के लोग बेईमान हों तो आपकी अपनी ईमानदारी ही आपको गलत महसूस कराने लगती है।
हाँ, पोर्शिया ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसे ऐसा महसूस कराया गया जैसे दुनिया को ईमानदारी से देखना ही उसकी सबसे बड़ी गलती हो।
और ये सब होता है भावनात्मक बेईमानी की वजह से। कहानी का कोई भी वयस्क किरदार अपनी सच्ची भावनाएं जाहिर नहीं करता।
सब कुछ दिखावा है, और इन सब के पीछे है प्यार और अपनेपन की एक गहरी तलाश। पोर्शिया एक घर चाहती है, एक परिवार चाहती है। कहानी की ट्रेजेडी यही है कि उसे घर तो मिलता है, लेकिन अपनेपन का एहसास कभी नहीं मिलता।
एक और दिलचस्प पहलू है देखने और आंकने का। पोर्शिया सबको देख रही है, उन्हें समझने की कोशिश कर रही है,
और बाकी सब उसे देख रहे हैं, उसे आंकने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए, डायरी देखने का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन जब डायरी लिखने वाले को ही देखा जाने लगता है तो वो एक हथियार बन जाती है।
ये आज के सोशल मीडिया के दौर में कितना सच लगता है ना।
बिल्कुल, हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा ऑनलाइन डायरी की तरह साझा करते हैं और फिर उसे दूसरों के जजमेंट के लिए छोड़ देते हैं।
बोएन का लिखने का तरीका भी कमाल का है, वो हमें सीधे किरदारों के मन में ले जाती हैं। हमें पता होता है कि ऐना क्या सोच रही है, जबकि पोर्शिया को ये सब नहीं पता।
इससे एक तनाव पैदा होता है और हमें पोर्शिया के लिए और भी ज्यादा दुख होता है।
तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी हमें सिखाती है कि वयस्कता की दुनिया में जीवित रहने के लिए जो भावनात्मक कवच हम पहनते हैं वो एक आवश्यक बुराई हो सकती है।
और उस कवच को पहनने की प्रक्रिया में अपनी मासूमियत और सच्चाई खो देना एक बहुत बड़ी त्रासदी है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर्स फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।